राम राम हरे हरे
राम राम हरे
हरे कृष्णा। तो आज ये जो सत्संग हरी कथा हो रही है, सुमुखा प्रभु के पिताजी सुरेश जी का जन्मदिन है। सुमुखा जी कह रहे थे जन्मदिन लोग मनाते हैं आजकल, पैसा भी खराब करते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही गिरते हैं। तो शराब पी के बाहर निकलेगा तो गिरेगा, तो हैप्पी कहाँ हो गया, अनहैप्पी बर्थडे होता है। बर्थडे में कुछ हैप्पी चीज है नहीं, तो अंग्रेज ने हमको मूर्ख बना दिया। वैदिक सनातन धर्म कहता है कि जन्म नहीं लेना चाहिए, जन्म लेना तो जेल में आना है, तो हम कुछ कैसे होंगे जन्म लेने के ऊपर। हमारे जन्म लेने के ऊपर खुश होने की तो कोई बात है नहीं दुनिया में। जब वेद शास्त्र कहता है कि दुनिया में जन्म लेना बंधन है, गर्भ में आना तो बंधन है, तो बंधन में आने के ऊपर खुशी करने की तो कोई बात नहीं है। कोई आदमी जेल में जाता है तो खुशियां मनाते हैं क्या? हाँ, जेल में जाने के ऊपर खुशी मनाने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जेल में अगर राजा आता है तो खुशी मनाते हैं, क्योंकि जेल वालों को छुट्टी मिलेगी। जेल में राजा अगर आ जाए तो बड़ी खुशियां होती है जेल वालों की, क्यों? राजा आया है तो हमारी उम्र कैद खत्म करके जल्दी छुट्टी दे देगा। तो भगवान का जब जन्मदिन होता है, अभी आने वाला है जन्माष्टमी, तो खुशी मनानी चाहिए कि हमारा बंधन टूटेगा उससे। बाकी हमारे जन्मदिन में कोई खुशी की बात नहीं है, बस एक खुशी की बात है हमारे जन्मदिन में कि हमने अगर जीवन में हमारे जन्म लेने के बाद कोई धर्म का काम किया, कोई सुपात्र पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान की सेवा में लगे, तो फिर हमारा जीवन सार्थक है। तो इसलिए सुरेश जी, आपका जीवन सार्थक है कि आपने सुमखा को पुत्र के रूप में जन्म दिया जो भगवान की सेवा में लगा है, इसलिए आपके जन्मदिन को हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं, क्योंकि एक भक्त को जन्म दिया है। भगवत गीता उपनिषद है, गीतो उपनिषद वेद का अंग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने व्यास देव के द्वारा, जिन्होंने वेदों की रचना की, कलयुग के लोगों में कम बुद्धि होने के कारण वेदों को समझना संभव नहीं है, स्त्री वैश्य शूद्र आदि वेदों का अध्ययन करने के अधिकारी भी नहीं है, इसलिए महाभारत के अंतर भगवद गीता को रख दिया। वेद को, उपनिषद को महाभारत के अंदर रख दिया, जिसके लिए वेदों के प्रवक्ता कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्स दुर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मत। सारे उपनिषद गाय का रूप धारण करें तो उसके अंदर मुख्य तो दूध होता है, रस, और उस दूध को निकालना भी सबको नहीं आता है। आज गोपाल ने उस दूध को निकालकर सारे वेद का सार अर्जुन रूपी बछड़े को पिला दिया, और फिर सबके लिए वो दूध उपलब्ध है अगर कोई भाग्यशाली है तो। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि वेद को हरेक व्यक्ति को वाचने के लिए, हरेक व्यक्ति को समझने के लिए व्यासदेव ने महाभारत में रख दिया उपनिषद को। भागवत के पहले श्लोक में गायत्री मंत्र को रख दिया, धीमहि सत्यम परम धीमहि अथातो, क्या वेदांत सूत्र का मंत्र रख दिया जन्मादिस्य, लेकिन अथ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र पढ़ने का अधिकार भी सबको नहीं है, लेकिन भागवत सब पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी सूक्ष्म भगवत बुद्धि के द्वारा व्यास देव ने गायत्री मंत्र को भागवत में रखा और गीता को महाभारत में रखा ताकि कलयुग के लोग बहुत सरलता से संसार सागर से पार होकर भगवत धाम को जा सके। दूसरे अध्याय भगवत गीता के अंदर जब संजय बोलता है, अर्जुन बुद्धिमान तो है, अर्जुन का एक अर्थ होता है सरल, जो बहुत सीधा है, जो सच है वो बोल देता है, कुछ छुपाता नहीं। बड़ी वेद वाक्य अर्जुन ने बोले हैं, पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, कोई यज्ञ करने वाला नहीं बचेगा, पितरों को पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए इस युद्ध को करना उचित नहीं है। तो संजय अर्जुन के स्थिति को देखकर दूसरे अध्याय में संजय बोलता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश हुआ है। कृपा का आवेश होने का मतलब क्या है? पहले कृपा अर्जुन के हृदय में नहीं थी, घर से तो तीर धनुष मान लेकर आया था, रथ लेकर आया था, सारथी को भी भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाया था, सेना भी इकट्ठी करके आया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हृदय में कोई ऐसा मोह बिठा दिया। किसका? कृपा किसको कहते हैं? अपने सगे संबंधियों से के ऊपर जब उसकी भलाई करना चाहता है तो उसको कृपा बोलते हैं। कृपा का आवेश हुआ, कैसे पता लगा इसके ऊपर कृपा इसको आ गई? कैसे पता लगा कि इसको कृपा है? बोला अश्रु पूर्णा कुलेक्षम, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है, उसके हृदय की क्या अवस्था है, दिल कैसे लग रहा है, उसका चेहरा कैसे दिख रहा है, आंखों से रो रहा है, विशीदंतम, बड़ा विषाद में हो गया है, अब वो निकल नहीं सकता अपने आप इस विषाद से। विषाद का अर्थ है ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा संकट जिससे स्वयं अपने आप आदमी नहीं निकल सके। जैसे कोई आदमी डूबता है तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकेगा, कोई दूसरा आके निकालेगा तो निकलेगा, नहीं तो डूब जाएगा। बीमार है तो अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकेगा, डॉक्टर के पास जाएगा तब ठीक होगा। जब ये शब्द कहा संजय ने तो धृतराष्ट्र की आंखें तो थी नहीं, अंधा तो था सूरदास, वो मुस्कुराने लगा, वो मुस्कुराने लगा, स्माइलिंग। क्यों? बोला अर्जुन तो एक लड़ने वाला था, वो ही रो रहा है, विषादग्रस्त हो गया है, तो हमारी विजय हो ही जाएगी। खुश हो गया धृतराष्ट्र, और संजय ने देखा कि हमारा मालिक गलत फहमी में है, इज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो शब्द एक बोल दिया, वाच मधुसूदन, भगवान का नाम मधुसूदन बोला। क्यों? बोला धृतराष्ट्र, ये मधुसूदन अभी बोलने जा रहा है, ये मधु राक्षस को जिसने मारा था ना, ये अर्जुन के हृदय में जो अभी कृपणता का राक्षस आया, इसको मार देगा, अर्जुन उठेगा और लड़ेगा, ये मधुसूदन है अभी बोलने वाला। तो मधुसूदन क्या बोला? भासरी भगवान वाच, पहली बार भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को मित्र के नाते से, क्या कह रहे हैं? क्लेव्यम मा समगम पारत नयतम उपपद्य शुद्रम हृदय तुरम। ये तो किसके बाद वाला श्लोक? इससे पहला श्लोक, श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम इमं रोम, हाँ कुतस्त्वा कश्मलम इमं, कहां से तुम्हारे अंदर ये कश्मल? कश्मल का मतलब ये गलत धारणा तुम्हारे अंदर कहां से आई? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्वे, इस वक्त अरे आना भी था तुम्हारे ऊपर दया तो घर में आता, युद्ध भूमि में थोड़ी दया आने की जगह है। अब शंख बज चुके हैं और अभी आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं लड़ाई नहीं करूंगा। विश्व में ये कौन सा समय? ये तो बहुत, ये तो समय ऐसा है कहीं से भी तीर आ सकता है, इस वक्त आप जो है रो रहे हो, ये विषम है, ये बहुत विशेष समय है, ये समय इस रोने धोने का नहीं है। कुतस्त्वा कश्मलम विश्व समुपस्थितम, ये कहां से तुम्हारे अंदर कश्मल आ गया है? और फिर कह दिया अनार्य जुष्टम, ये आर्यों को शोभा नहीं देता। जो आर्य हुए जो वेद के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं उनको तुम्हारे जैसा रोना धोना पसंद नहीं है, ये आर्यों को शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम, ये अनार्य जैसी बात कर रहे हो, ये आर्यों के लिए शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम, अर्जुन कहता कोई बात नहीं लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा। बोला अस्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। बोला फिर भी लोग तो कहेंगे बड़ा दयालु था अर्जुन। अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुम्हारी कीर्ति भी नहीं मिलेगी। अगर तुम भगवान की इच्छा के अनुसार इस संसार में काम नहीं करोगे तो न आपको कोई आर्य मानेगा, न आपको इस संसार से जाने के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी और न ही कीर्ति मिलेगी। ये श्लोक का भाव है कि अर्जुन मेरी इच्छा के अनुसार, अगर मैं कौन हूं, कोई कहे अर्जुन कहे आप कौन है, तो भगवान कहते वेद्यम पवित्रम ओमकार, मैं वेद्यों में पवित्र ओमकार में हूं। वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर एवच ऋग्वेद श्याम वेद यजुर्वेद में हूं। वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मेरे को ही जानना है क्योंकि वेद मैंने दिए हैं ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान मैंने दिया। तो मेरे वाक्य को मेरी इच्छा के अनुसार कर्म करोगे तो आर्य कहलाओगे, उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी और कीर्ति और यश भी प्राप्त होगा। तो बहुत सी बहुत सरल सा इस दुनिया में साधन एक समझ लीजिए। अच्छा नागरिक किसको मानते हैं? हु इज द बेस्ट सिटीजन? अच्छा नागरिक किसको मानते हैं? जो राज्य के नियम का पालन करे, जो नियम बना है, कानून बना है, उसका पालन करे, अपना ठीक तरह से कर्तव्य कर्म करे और देश के हित के लिए सोचे, वो अच्छा आदमी कहलाया जाता है। ये हुआ शरीर के लिए। आत्मा के लिए जो भगवान के वेदों की शिक्षाओं के ऊपर अपने जीवन को चलाए वो अच्छा जीव माना जाता है। जैसे अच्छा शारीरिक रूप से नागरिक वो है जो अपने देश के नियमों को माने, अच्छा जीव वो है जो भगवान के बताए हुए नियम को माने। तो धर्म के आचरण को मानने वाला आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान माना जाता है। कितने मानो आपकी उम्र में, आपने 50 साल तो देखे हैं, 60 साल देखे हैं, लोगों ने तो बहुत तरक्की की है लेकिन गाय भैंस या तो है नहीं, कोई कुत्ते तो हैं, उन्होंने कोई प्रगति की है क्या? कुत्तू ने कोई अस्पताल अस्पताल बनाया है अपने बच्चों को बीमार को, स्कूल बोला है कुत्तू ने कुछ? हाँ या इज देयर एनी स्कूल ओपन बाय डॉग्स, एनी हॉस्पिटल ओपन बाय? नो, बिकॉज दे डोंट हैव बुद्धि, उनको पता नहीं है। दे नो हाउ टू ईट, बस देयर क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, दे नो दिस मच, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं जानते वो। मानव ने इतनी प्रगति की है गत 10 सालों में, 100 सालों में, लेकिन जानवरों ने नहीं की। तो जानवर में, पशु में और आदमी में पानी है मेरा बेटा, अंतर क्या है? धर्म विशेष अधिको, तो धर्म क्या है? धर्म विशेष है मानव में। अगर धर्म है तो मानव है, नहीं तो जानवर है। जानवर क्या करता है? खाता पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, अपनी रक्षा के लिए कुछ साधन बनाता है, आहार निद्रा भय मैथुन्य, पशु भी समान हो। और हम भी दुनिया के अंदर जो भी काम करें यही चार चीजों को अच्छा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्माधिको विशेष है, धर्म अधिक है। तो धर्म कौन देता है? धर्म कहां से आता है? किसी आदमी ने धर्म को बनाया? नहीं, धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये यमराज कह रहा है। ये ऐसा आदमी कह रहा है जिसे सब लोग डरते हैं और उसकी बात नहीं मानोगे तो जम का डंडा लगेगा। धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो धर्मराज कहता है, जो भगवान देता है। इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्थ अभ्यो तथा नम धर्म से तथा आत्मानम सर्जाम्य, जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानी होती है, तब मैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आता हूं। तो क्या धर्म की हानि कैसे होती है? धर्म तो भगवान ने दिया, उसकी हानि नहीं हो सकती है। लेकिन आदमी धर्म के ऊपर नहीं चलते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। धर्म की हानि का अर्थ यह है कि लोग धर्म ही नहीं रह जाते हैं, लोग धर्म कर्म नहीं करते हैं, पापी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। धर्म के नाश होने का यह मतलब नहीं है कोई धर्म ऐसी चीज है जिसको आग लगाओगे तो जल जाएगा, नहीं। धर्म तो शाश्वत है, धर्म सनातन है, वेद अपौरुष्य है, कभी नाश होने वाला नहीं है। लेकिन आदमी जब नहीं चलता है धर्म के नियमों के ऊपर, और जब संख्या असूली प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ जाती है, तब भगवान को संतुलन ठीक करने के लिए आना पड़ता है। वैसे भगवान को आने की जरूरत नहीं है संतुलन ठीक करने के लिए, बदमाशों को मारने के लिए 2 इंच से, केवल 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर अगर चंद्रमा थोड़ा नीचे आ जाए तो सारा समुद्र ऊपर आए और सबको डुबा दे। मून कम्स डाउन 2 इंचेस तो समुद्र का सारा पानी बाहर उछल के आ जाएगा, और 1.5 इंच सूर्य नीचे आए तो सब जल के मर जाए, इतनी गर्मी हो जाएगी। और भगवान को ये 1-2 इंच नीचे ऊपर करने में कोई परेशानी नहीं है, इट्स सो सिंपल। शेषनाग थोड़ी देर के लिए सर को खुजाए तो पूरा भूकंप हो जाए और सारे लोग नीचे मर जाए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन भगवान आते क्यों है? बोला भक्त बुलाते हैं इसलिए आते हैं, भक्त भगवान को बुलाते हैं। भगवान को कहते वरेण्यम, हम आपका वरण करेंगे। वरण करने का मतलब क्या है? आपको गले से लगाएंगे, आपके सामने बैठेंगे, आपसे प्रेम की बातें करेंगे। मॉरिशस में शादी होती है तो लड़कियों को क्या बोलते हैं? लड़का और लड़की होते हैं ना शादी के लिए, उनका नाम क्या होता है? दूल्हा दुल्हन कहते हैं, वर नहीं कहते, वर वधू, वर कहते हैं ना। वर का मतलब जिसको वरण किया जाए, मतलब जिसको पूरा जीवन दिया जाए, जिसके जिसको गले में हाथ डाल के गले से मिलाया जाए, हृदय से लगाया जाए, बैठ के प्रेम से बातें की जाए, उसको वरेण्यम बोलते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र में वरेण्यम, इसका मतलब भगवान को हम गले से लगाएंगे, दिल से मिलाएंगे और बैठ के प्रेम से उससे बातें करेंगे। तो ऐसा कोई प्रेमी होगा तभी तो भगवान नीचे आएगा ना। कोई कहे भगवान को हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो फिर कहना है भगवान लूला है, लंगड़ा है, तो फिर कैसे नीचे आएगा? तो कैसे क्यों आएगा? भगवान तुम देखते नहीं हो, फिर वो कैसे नीचे आएगा? तो ठीक तरह ये कहना चाहिए, भगवान आप कैसे हैं? आप सुंदर हैं, आप मनोहर हैं, आप आदि पुरुष हैं गोविंद, आप आनंद देने वाले हैं, आप आइए। तो धर्म भगवान देते हैं, धर्म किसी आदमी ने नहीं शुरू किया, ये जितने भी मजहब है ये आदमियों ने शुरू किए हैं, ये समय के साथ खत्म होने वाले हैं। इसकी एक अवधि है, एक समय है, फिर नहीं चलेंगे। जब किसी धर्म का शुरुआत करने वाला है तो जो चीज का शुरुआत होगा उसका अंत होगा। वेयर देयर इज अ बिगिनिंग देयर इज अ एंड, कुछ आरंभ होगा तो अंत भी होगा। लेकिन वैदिक सनातन धर्म का न आरंभ है न अंत है, ये सनातन है। इसका प्रवर्तक, इसको चलाने वाला, इसको स्थापित करने वाला स्वयं साक्षात भगवान है। तो हमको क्या सीखना है आज के दिन, कि इस जीवन में भगवान की इच्छाओं के अनुसार, धर्म के नियमों के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। और भगवान क्या कहते? मन मना भव मद भक्तो मदियाज इमाम नमस्कार, मेरे भक्त बनो। भगवान कहते मेरे भक्त बनो, अब भगवान कहते मेरे भक्त बनो तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो कौन भगवान का भक्त हमको बनाएगा? वैसे एक बात का ध्यान रखिए कि भगवान भक्त के बगैर नहीं मिलेंगे। अब भक्त के पास जाए वो तो ही भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। भगवान को मिलने का साधन केवल भक्त है। इसलिए कैसे भी भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों का संग करना चाहिए और भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये हमारे जन्म की सार्थकता है, ये हमारा जीवन की सफलता है। तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है, सौभाग्य की, के सुरेश जी के जन्मदिन के ऊपर हरी कथा और हरी कीर्तन का आयोजन किया सुमुखा जी ने। अभी तो भारत में सेवा कर रहे हैं, आप भी जाइए कभी वृंदावन का दर्शन करके आइए, माता पिता जी जाओ घूम के आओ, एक बार तीर्थ यात्रा करके आइए, सब बहुत सुंदर है पूरा भारत। देख हिमालय को जाके देखो, गंगोत्री जमुनोत्री को देखो, काशी को देखो, जगन्नाथपुरी को देखो, मायापुर वृंदावन सब जाओ दर्शन करो। बच्चा वो सुपात्र है जो माता पिता को तीर्थ यात्रा कराए, तो सुमुखा जी इनको तीर्थ यात्रा का प्रबंध